मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 2 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं विशेष कुमार गिरी, आपका गांव है सोयपुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सरोज कुमार महतो, आप जमशेदपुर, झारखंड से हैं। राजेश कुमार, आप गया, बिहार से हैं। मोहम्मद तैयब बिन मजीद, आप इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से हैं। शिव पूजन मौर्य, आप भी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से हैं। काजल चंदेल, आप भोपाल, मध्य प्रदेश से हैं। और अमन कुमार रावत, आप अयोध्या, उत्तर प्रदेश से हैं। तो विशेष, सरोज, राजेश, मोहम्मद तैयब, शिवपूजन, काजल और अमन, आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पास 2 मेल आए हैं, मैं जरा उनसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक मेल आया धर्मेंद्र कुमार, जो पढ़री उत्तर प्रदेश से, हमारे 10th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने सूचित किया है कि अभी यूपीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसको उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो धर्मेंद्र, आपकी सफलता के लिए हम सब की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे भी आप इसी तरह से सफल होते रहें इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी। जब हमारे स्टूडेंट्स यहां आते हैं तो मैं अक्सर उनसे एक वायदा करता हूं कि 15 दिनों के बाद आप वही नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। और फिर मैं आखिरी दिन अपने कन्वोकेशन एड्रेस में, कन्वोकेशन कह लीजिए, कन्वोकेशन फेयरवेल एड्रेस कहना चाहिए, सॉरी, फेयरवेल एड्रेस में उनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्लीज अगर आपको जब ऐसा महसूस हो कि आपके अंदर वास्तव में वो तब्दीलियां आई हैं, सकारात्मक तब्दीलियां, तो एकेडमी को सूचित भी करें। मुझे इस तरह के एक तब्दीली से संबंधित मेल मिला है जो योगिता जी ने दिल्ली से लिखा है। मित्रों, मैं वह मेल आप सबको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बताता चलूंगा आपसे। रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th बैच योगिता फ्रॉम दिल्ली। मैं 10वीं बैच की स्टूडेंट योगिता दिल्ली से हूं। सर, आई एम हैप्पी टू से दैट आई एम चेंज्ड टोटली। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि मैं पूरी तरह से बदल गई हूं। माय व्यूज एंड वेज ऑफ स्टडी हैव चेंज्ड। मेरा दृष्टिकोण और पढ़ने का तरीका बदल गया है। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक नाउ विच वॉज डिफिकल्ट फॉर मी बिफोर टेकिंग क्लास। मैं अब उन टॉपिक्स को भी बड़ी आसानी से समझ जाती हूं जिन्हें क्लास से पहले समझने में बहुत कठिनाई हो रही थी। सर, स्पेशल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लाइफ बिकॉज आई एम फीलिंग दैट आई बॉर्न अगेन। सर, मैं इस नए जीवन को देने के लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ है। आई हैव चेंज्ड माई थॉट्स एंड वे ऑफ स्टडी। मेरा दृष्टिकोण बदल गया है और मेरे पढ़ने का तरीका बदल गया है। आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर द क्लासेज आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन रॉन्ग ट्रेन, कि क्लास किसी गलत ट्रेन में यात्रा कर रही थी। अब मुझे लगता है आई बोर्ड राइट ट्रेन फॉर स्टडी बिकॉज ऑफ योर क्लासेस सर। और आपके क्लासेस के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब अपने सही ट्रेन में चढ़ गई हूं। आई वॉन्ट टू गेट माई चिल्ड्रेन ज्वाइन दिस क्लासेस फॉर देयर फ्यूचर। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे भी भविष्य में आपकी ये क्लासेस अटेंड करें क्योंकि ये क्लासेस केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए लाभदायक हैं। बिकॉज दिस क्लासेस आर नॉट फॉर स्टडी ओनली, दिस क्लासेस आर यूजफुल फॉर होल लाइफ। थैंकिंग यू सर, योगिता दिल्ली। मित्रों, ये उनका मेल है, उनकी प्रतिक्रिया मैंने आप सबके सामने रखी है। और भी जो दूसरे हमारे स्टूडेंट रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वो भी ऐसा महसूस करते हैं तो प्लीज मुझे मेल के द्वारा सूचित करें। इससे हम लोगों को अपना दृष्टिकोण बनाने में, चीजों को और अधिक अनुकूल ढालने में मदद मिलती है। थैंक योगिता सो मच, थैंक्स टू यू। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं लोकतंत्र के मायने, जिसकी कल चर्चा कर रहा था, उसी के बारे में, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले एक दो खबरें हैं वो आपके सामने रख दूं। आपने देखा कि एमिसेट सैटेलाइट छोड़ा गया है, श्रीहरिकोटा से एमिसेट सैटेलाइट छोड़ा गया है और उसके साथ ही साथ 28 विदेशी सैटेलाइट भी छोड़े गए हैं। ये जो एमिसेट सैटेलाइट है ये क्या है, इसे बस थोड़ा सा आप जान लीजिए। एक तो ये है कि जमीन पर जितने भी संचार प्रणालियां हैं, जो राडार हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनसे जो जो तरंगे निकलेंगे, जो सिग्नल्स निकलेंगे, उन सिग्नल्स को ये जो एमीसेट सैटेलाइट है ये पकड़ सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र में जो भी सीमा, जो भी इस तरह के मूवमेंट होंगे, उस मूवमेंट का तुरंत यह सैटेलाइट पता लगा लेगा और इससे डेफिनेटली हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और अधिक मजबूत होगी। एमीसेट सैटेलाइट, इसके बारे में मेरी समझ से इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल डाला गया है जो द हिंदू में छपा था, फली एस नरीमन साहब का, जो बहुत माने हुए एडवोकेट हैं। सरकारी गोपनीयता अधिनियम, इसे आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, एक तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम है जिसे हम इंग्लिश में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। दूसरा है अभी सूचना का अधिकार। सच पूछे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अगेंस्ट ही सूचना का अधिकार आया था, क्योंकि सरकार से आप कोई भी सूचना मांगिए तो वो कह दिया करती थी कि नहीं, ये सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत आपको नहीं दी जा सकती। फिर 2005 में सूचना का अधिकार आया, उसमें कुछ सूचनाओं के लिए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल किया गया, बाकी सूचनाएं आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से मांगे जाने पर दी जाती हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम पर नहीं दी जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको केवल सूचना के अधिकार की ही तैयारी नहीं करनी है, बल्कि साथ ही साथ सरकारी गोपनीयता जो अधिनियम है उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जाननी ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों में लगातार टकराव होता रहता है। तो मैं चाहूंगा कि इसे एक बार आप थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी के रूप में जरूर देख लें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है लोकतंत्र के मायने। कल मैंने एक अलग तरीके से लोकतंत्र के बारे में आपको बताने की कोशिश की थी फ्रेंड्स, और अब मैं उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को हम लोकतंत्र मानते हैं, अब मेरी समझ से लोग पंचायत के चुनाव को भी अब लोकतंत्र मानने लगे होंगे। और सही मायने में तो मुझे लगता है कि ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, चाहे वो शहरी निकाय हों या ग्रामीण निकाय हों, ये सही मायने में लोकतंत्र है। सही मायने में लोकतंत्र इस रूप में है कि एक तो उसमें नागरिक, जो सिटीजन है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और ये जो काम कर रहे हैं ये डे टू डे की लाइफ को प्रभावित करने वाले काम कर रहे हैं। पंचायतें इसी तरह के काम कर रही हैं कि सड़कें कैसे बने, पीने के पानी का इंतजाम कैसे हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, यही सारे इंतजाम वो कर रहे हैं, स्वच्छता कैसे रखी जाए। और हमारे जो शहरी निकाय हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो भी पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, म्युनिसिपैलिटी, वो भी यही कर रही हैं। तो हमारे जीवन से जो सीधे जुड़े हुए जो संस्थान हैं वो हमारी लोकल बॉडीज हैं, और वो भी बिल्कुल अब डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम कर रही हैं और संस्थागत तरीके से उनके चुनाव हो भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोकल बॉडीज हैं ये केवल सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करने वाले संस्थान नहीं रह गए हैं, बल्कि आप देखिए कि अब वो खुद निर्धारित करते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, फिर वो खुद निर्धारित करते हैं कि इस जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है। जब वो चीज पूरी हो जाती है तो फिर खुद उसका फायदा उठाते हैं और खुद उसका सर्वेक्षण करते हैं और खुद उसका रखरखाव करते हैं, यानी कि अब सब कुछ उनके अपने हाथ में हो गया है, राइट। तो ये तो हमारे तीन स्तर हो गए दोस्तों, जो लोकसभा केंद्र के ऊपर के स्तर पर, विधानसभा राज्य के स्तर पर, और जो लोकल बॉडीज के चुनाव है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर। देखिए कि अब कहां कहां आपको अलग अलग रूपों में लोकतंत्र दिखाई देता है, चूंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं उसे विस्तार के साथ व्याख्यायित कर सकूं, लेकिन फिर भी इशारा तो किया ही जा सकता है। जैसे आप देखिए कि हमारे चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार हमारे प्रतिनिधियों को है जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, और हमारे प्रतिनिधि प्रश्न पूछते हैं। अब ये जो प्रश्न पूछने का अधिकार है इसे आप किस रूप में लेंगे? देखिए, वो भले ही वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उस किसके बिहाफ पर पूछ रहा है? वो हमारे बिहाफ पर पूछ रहा है, और इस तरह से प्रश्न पूछकर लगातार वो सरकार को सतर्क करता रहता है, सरकार को लगातार अकाउंटेबल बनाता रहता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता रहता है, और इस तरीके से लगातार जो जनता का हस्तक्षेप है वो विधायिका पर पड़ता रहता है। ये कम बड़ी बात नहीं है। आपने सुना होगा जब संसद चल रही है या जब विधानसभाएं चल रही हैं तो कई बार कुछ इस तरह की बात चीजें आती हैं कि जनता के से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल प्राथमिक स्थान ले लेती हैं, प्रायोरिटी ले लेती हैं। सुना आपने स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि बिजनेस चल रहा है, सदन का काम चल रहा है, बिल्कुल निर्धारित तरीके से चल रहा है, लेकिन अचानक ही कोई सदस्य कहता है कि नहीं, ये जो निर्धारित काम है इसको स्थगित किया जाए, ये मामला ज्यादा जरूरी है, और जो स्पीकर हैं या जो उपसभापति हैं उन्हें जब लगता है कि नहीं ये मामला ज्यादा संगीन है, ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप देखिए कि वो जो निर्धारित बिजनेस है, जो निर्धारित कार्य है, उसको किनारे करके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके और उस विषय पर बहस कराई जाती है, और पता लगा कि जिस विषय पर बहस कराया जा रहा है वो एक सामान्य नागरिक के सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां भी भारत, हम भारत के लोग मौजूद हैं? इसी तरह से आप देखिए कि किस कितने सारे प्रस्ताव समय समय पर संसद में लाए जाते हैं, बकायदे वहां शून्यकाल की व्यवस्था की गई है, बकायदे वहां अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ढेर सारे हैं, वो आप संविधान में पढ़ लेंगे। तो ये जितने भी प्रस्ताव हैं इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि जनता के प्रतिनिधि बीच बीच में भी सरकार के काम के प्रति सरकार को लगातार सतर्क करते रहें और जो नई आवश्यकताएं हैं उनके बारे में बताते भी रहें। मित्रों, आप संसदीय समितियों के बारे में पढ़िए, मैं सजेस्ट करूंगा, वैसे भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जो संसदीय समितियां हैं उनके बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि बस संसद में जो बहस हो रही है वही सब कुछ है? नहीं, जितने भी हमारे मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों से जुड़ी हुई संसदीय समितियां होती हैं, और याद रखिए कि उस मंत्रालय के काम काज की निगरानी ये संसदीय समितियां करती रहती हैं, और इन संसदीय समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बीच बीच में बकायदे इनकी बैठकें होती हैं, क्योंकि कई बैठकों में मुझे भाग लेने का मौका मिला है, ऑर्गेनाइज करने का कह लीजिए, कि इनमें बकायदे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो दूसरे मेंबर्स हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के, वो मंत्रालय के बारे में प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे ऐसे व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो लगातार ये जनप्रतिनिधि ही हैं जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, ये बकायदे मंत्रालय के काम पर निगरानी भी रखते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 5 साल के बाद हमारे हाथ कट जाते हैं? और आप देखिए कि बीच बीच में जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे भी ये पता लग जाता है कि जनता क्या सोच रही है, इसके बारे में तो ढेर सारे प्रमाण आपके सामने मौजूद हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें केवल 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने अधिकारों का उपयोग करने का, नहीं, अगर हम सतर्क रहें तो बीच बीच में सैकड़ों वक्त ऐसे होते हैं जब हम बकायदे अपने अधिकारों से सरकार को परिचित करा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को सरकार के सामने रख सकते हैं, और यही लोकतंत्र के सही मायने भी हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: कड़िका शर्मा, रोहित सवधानी, हिमांशु पांडे, श्वेता पद्म नायक, नीतीश कुमार खातोती हरियाणा से, दीपक कुमार सिवान बिहार से, और तुलसी कुमारी भागलपुर बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।